लाइफ केयर हॉस्पिटल में साक्षी की सर्जरी चल रही थी। उसकी सर्जरी अयान कर रहा था और उसने आयु को ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने से मना कर दिया था। आरव भी वहां पर मौजूद था और इस सारे ड्रामा को देख रहा था। ऑपरेशन स्टार्ट होते ही आयु गुस्से में वहां से चली गई। आयु को वहां देखकर इतनी क्रूशियल सिचुएशन में भी आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, अगर तुम मुझे इस तरह रोज मिलती रही तो ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं रहने वाला बेबी। वही माहिरा ने आरव के चेहरे की स्माइल को नोटिस किया। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे मुस्कुराते देखा माहिरा ने खुद से कहा, ये स्माइल क्यों कर रहा है, वो भी इस सिचुएशन में। पता नहीं लास्ट टाइम इसे कब इस तरह सुकून से मुस्कुराते हुए देखा था। आई होप इसकी ये स्माइल किसी और के लिए ना हो। बोलते हुए माहिरा के चेहरे के भाव सर्द हो गए। माहिरा तेज कदमों से आरव के पास गई। उसे देखते ही आरव की स्माइल तुरंत गायब हो गई। तुम स्माइल कर रहे हो, कोई खास रीजन, माहिरा ने इससे पूछा। हाँ, यहाँ के ड्रामा को देखकर अपने आप स्माइल आ गई। अंदर साक्षी की हालत इतनी क्रिटिकल है और यहाँ के डॉक्टर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आरव ने जानबूझकर बात को बदल दिया। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे साक्षी को इस हॉस्पिटल में नहीं लाना चाहिए था। आई होप वो ठीक हो जाए, माहिरा ने जवाब दिया। इस हॉस्पिटल की इमेज भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आरव ने सार्केस्टिक वे में कहा। कबीर वहीं पास में वेटिंग एरिया की बेंच पर बैठा था। उसने उन दोनों की बातें सुनी तो आरव की तरफ देखने लगा। ये आरव सिर खुद के ही हॉस्पिटल की बुराई क्यों कर रहे हैं, कबीर ने अपने मन में कहा। उसे कुछ पूछने का मौका मिलता उससे पहले आरव कबीर की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करके आता हूँ, तो माहिरा का ध्यान रखना। कबीर ने उसके बात पर हामी भरी। माहिरा को वहीं पर छोड़कर आरव आयु से बात करने के लिए निकल गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन आयु उसे कहीं नजर नहीं आई। इतनी सी देर में कहाँ चली गई, मुझे भी तुरंत निकलना चाहिए था, पर माहिरा की वजह से अटक गया, आरव ने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र वहां से जा रही एक नर्स पर पड़ी। उसने उसे रोककर पूछा, सुनिए, मुझे यहाँ एक डॉक्टर से मिलना है। कौन सी डॉक्टर, यहाँ तो काफी सारे डॉक्टर्स हैं, नर्स ने पूछा। हाँ, वो डॉक्टर, आरव को अब तक आयु का नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पर यहाँ कोई डॉक्टर आ काम नहीं करती, नर्स ने सिर हिलाकर कहा और वहां से चली गई। दयार, मुझे उसका नाम तक याद नहीं, अयान से पूछूं क्या, सोचते हुए आरव ने अपना मोबाइल निकाला और अयान को कॉल करने लगा, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अयान इस वक्त ओटी में मौजूद है। ओटी में हुआ तो क्या हुआ, मेरा कॉल तो पिक कर ही सकता है, लेकिन ये मेरा कॉल क्यों पिक करेगा, छवि सिंघानिया का बेटा जो ठहरा, आरव ने मुंह बनाकर कहा और फिर खुद ही आयु को हॉस्पिटल में ढूंढने लगा। वहीं आयु ऑपरेशन थिएटर के बाहर अयान से बहस होने के बाद सीईओ मिस्टर कपूर के केबिन में आई थी। वो अयान की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर ओबेरॉय, मैं पिछले 20 मिनट से आपको ये बात समझा कर थक गया हूँ कि ये आपके सीनियर डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सर्जरी में आपकी हेल्प लेना चाहते हैं या कौन सी में नहीं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मिस्टर कपूर ने थके स्वर में कहा, क्योंकि आयु काफी देर से उनसे बहस कर रही थी। हाँ, तो मैं अपने सीनियर की कंप्लेंट करने आई हूँ कि उन्होंने बिना किसी रीजन के मुझे ओटी से बाहर निकाल दिया, इतने लोगों के सामने मुझ पर गुस्सा किया। आई डोंट नो एनीथिंग सर, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, आयु ने गुस्से में कहा। उसके दोनों हाथ मिस्टर कपूर के सामने लगी बेंच पर टिके थे। लगता है एक्शन अब तुम्हारे खिलाफ लेना होगा, उस दिन की गलती के बाद में मैंने तुम्हें छोटी सी सजा देकर छोड़ दिया था, मिस्टर कपूर बोल रहे थे, तभी आयु ने उनकी बात बीच में काट कर कहा। ओ रियली, वो छोटी सी सजा थी, मैं पूरी रात यहाँ ड्यूटी करती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा 3 घंटे जनरल वार्ड में ड्यूटी करना आसान बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हो मैंने बिना कंप्लेन किए आपके पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया और आज तक अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही हूँ। हाँ, तो कोई एहसान नहीं कर रही, किसने कहा था आरव खुराना की गाड़ी को खराब करने के लिए, ये तो अच्छा हुआ अयान ने सब कुछ संभाल लिया, वरना उस दिन वो काफी गुस्से में था। अयान से याद आया, उसी ने उस दिन सब कुछ संभाला था और आज तुम उसकी शिकायत लगाने मेरे सामने खड़ी हो, मिस्टर कपूर गुस्से में बोले। आरव आयु को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहा था, उसे मिस्टर कपूर के केबिन के बाहर तेज आवाज में बहस करने की आवाजें आईं, तो वो रुककर उनकी बात सुनने लगा। इस कमीने ने इसे पनिशमेंट दी, ब्लडी हेल, तभी मैं सोचूं जब देखो थकी हारी बाहर मिलती है, बेचारी। आयु को सजा देने की बात से आरव के चेहरे पर गुस्सा था। कुछ भी सोचे समझे बिना आरव सीधा केबिन के अंदर गया। उसे देखते ही मिस्टर कपूर खड़े हो गए। उनके अचानक खड़े होने से आयु ने पीछे मुड़कर देखा तो आरव वहां था। बस इसी के यहाँ आने की कमी थी, जब से ये मेरी लाइफ से जुड़ा है हर रोज एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, आयु ने बड़बड़ाकर कहा। आरव को वहां देखकर आयु मिस्टर कपूर से बोली, एक्सक्यूज मी सर, वी विल टॉक यू लेटर। हाँ, एहसान होगा तुम्हारा, मिस्टर कपूर ने आंखें घुमाकर कहा। उनकी इस हरकत पर आरव के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। आयु वहां से जाने लगी, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसी लहजे में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है डॉक्टर। आयु ने आरव का हाथ छटका और उसकी तरफ देखा। क्या, इस तरह मत देखो, तुम्हें पता तो है उस दिन तुम्हारी गाड़ी मैंने ही खराब की थी, उसके लिए मुझे पनिशमेंट भी मिल रही है, और क्या चाहते हो जो इस तरह गुस्से में देख रहे हो, आयु ने कंधे उचका कर कहा।
आयु के बदतमीजी से बात करने पर मिस्टर कपूर ने उसे डांटते हुए सख्त लहजे में कहा, ये तुम इनसे किस लहजे में बात कर रही हो? जानती भी हो ये कौन है?
हाँ, मुझसे बेहतर इन्हें और कौन जान सकता है,
आयु ने जवाब में कहा, जिस पर आरव के चेहरे के भाव नरम पड़ गए और फेस पर हल्की स्माइल थी। देखा मिस्टर कपूर, आपकी डॉक्टर मुझे अच्छे से जानती है। अब जान पहचान का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं और उस दिन पर आते हैं जिस दिन इन्होंने मेरी गाड़ी खराब की थी। इन्होंने जो भी किया उसके बाद बातें अधूरी रह गई थी। चलिए बैठकर सब निपटा देते हैं, आरव ने मिस्टीरियस वे में कहा। उसके बाद आरव आगे आया और चेयर खिसकाकर उस पर बैठ गया। उसने आयु को भी बैठने का इशारा किया। उसके इस तरह बात करने पर आयु बुरी तरह घबरा गई तो मिस्टर कपूर के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था।